रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चितवन की राप्ती नगरपालिका के खहरे पुल स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में बस और माइक्रो बस के आपस में टकराने से 7 लोगों की हुई मौत। ईरान में रहे 16 नेपालियों का भारत सरकार के सहयोग में उद्धार किया जाएगा, परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा ने दी जानकारी। और ईरान इसराइल युद्ध के 9 दिनों तक 400 से अधिक ईरानी नागरिकों की हो चुकी है मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में प्रतिपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के विरोध के बीच विनियोजन विधेयक 2082 अंतर्गत मंत्रालयगत शीर्षकों पर बहस हुई। आज की बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पेयजल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह और संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के विभिन्न शीर्षकों पर बहस हुई थी। बहस के दौरान खर्च में कटौती के प्रस्ताव के साथ सांसद डॉ अमरेश कुमार सिंह, प्रेम शुवाल, अमन लाल मोदी, प्रभु शाह लगायत ने बजट के क्रियान्वयन पर संदेह जाहिर करते हुए बजट में सुधार लाने का आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। ईरान में फंसे हुए 16 नेपालियों को भारत सरकार के सहयोग में उद्धार किया जाएगा, ये बात परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने बताई। आज रासा के साथ बातचीत में परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि ईरान में मौजूद 16 नेपालियों के उद्धार के लिए उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है और इस पर भारत सकारात्मक है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास अपने नागरिकों का उद्धार कर रहा है और इस क्रम में उसने नेपालियों के भी संपर्क में आने के लिए सूचना जारी किया है। चितवन की राप्ती नगरपालिका 4 खहरे पुल स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में आज बस और माइक्रो बस के आपस में टकराने से हुई दुर्घटना में एक गर्भवती सहित 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में अन्य 24 लोग घायल भी हुए हैं। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में मकवानपुर हटिया 3 के सोम प्रसाद रूपा खेती, हेटौड़ा 5 की मैया कुमारी न्यूपाने पहाड़ी, माइक्रो बस चालक मकवानपुर हेटौड़ा 10 के राजू थिंग, चंद्रनिगाहपुर 6 की सीता चौधरी समेत शिनाख्त नहीं हो सके अन्य 1 पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह धनगढ़ी से काकड़भिट्ठा की ओर जा रही बस और मकवानपुर से नारायणगढ़ की ओर जा रही माइक्रो बस के आपस में टकराने से ये हादसा हुआ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत दुमकीबास दाउन्ने खंड में बड़े और भारी सवारी संचालन में रोक लगाया गया है। दाउन्ने खंड में पिछले और डायवर्सन में गाड़ी फंसने की समस्या होने के कारण सड़क विभाग और प्रशासन ने ऐसा निर्णय किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अधिक बारिश के बाद आए बाढ़ और भूस्खलन के कारण विभिन्न क्षेत्रों के 10 स्थानों में अवरुद्ध रहे सड़कों में से अभी 7 स्थानों के सड़क में पार वाहन संचालन में आया है और अभी 3 स्थानों का पार वाहन बंद है। ये जानकारी नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता DIG विनोद घिमिरे ने दी। उनके अनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व के बिनई नदी के डायवर्सन बहाने से अवरुद्ध हुए सड़क अभी संचालन में नहीं नहीं आ पाई है। इसी तरह रोलपा की त्रिवेणी गांवपालिका वार्ड नंबर 7 जंग डांडा में भूस्खलन के कारण घोराही रुकुम शहीद मार्ग अवरुद्ध बना हुआ है। भूस्खलन के कारण पालपा की तिनाऊ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 सुरुंग मार्ग के सड़क अवरुद्ध होने से सिद्धार्थ राजमार्ग बंद है। उनके अनुसार ललितपुर की बागमती गांव पालिका में भूस्खलन के कारण अवरुद्ध कांति लोकपथ पूर्ण रूप से संचालन में है। इसी तरह धनकुट्टा की सागुरी गढ़ी गांव पालिका में भूस्खलन से अवरुद्ध सड़क, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापुर के बुलिंग टार में भूस्खलन के कारण अवरुद्ध काली गंडकी कॉरिडोर, म्यागदी के बेनी जोमसोम सड़क गुलमी में अवरुद्ध काली गंडकी कॉरिडोर का भी भूस्खलन हटा करके सड़क खोला गया है, ये जानकारी पुलिस ने दी। इसी तरह जुमला में अवरुद्ध रहे जुमला मुगू सड़क, डोलपा में बाढ़ के कारण अवरुद्ध भेरी कॉरिडोर भी एक तरफी रूप से खोला गया है, ये जानकारी पुलिस ने दी। बता दें कि शुक्रवार से देश भर में ही मानसून का फैलने से देश भर ही मानसूनी वायु के प्रभाव है, इसलिए जोखिम बढ़ने के मद्देनजर सतर्कता अपनाने के लिए सभी से पुलिस ने अनुरोध किया है। समूची पृथ्वी और मानव स्वास्थ्य के लिए योग के नारे के साथ आज देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सन 2014 में किए गए निर्णय के तहत सन 2015 के 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर घाटी के काठमांडू, ललितपुर, बीरगंज, जनकपुर, मुस्तांग लगायत के देश के विभिन्न स्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा आज ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग मानव जीवन के लिए बहुआयामिक पक्ष है। प्रधानमंत्री ने सभी से योग को दिनचर्या बनाने का आग्रह किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जनसंपर्क प्रमुख हुसैन केरमानपुर ने इजरायली हमलों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि पिछले 9 दिनों में हुए हमलों में 400 से अधिक ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें 54 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 3056 लोग घायल हुए हैं। केरमानपुर के अनुसार अधिकांश मृतक और घायल आम नागरिक है। घायलों में से 2220 लोगों का इलाज कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 232 लोगों का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। इस दौरान देश भर में स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमों ने 457 सर्जरी की है। ईरान में इजरायल के 13 जून को शुरू हुए हमले के बाद से अब तक कम से कम 430 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और करीब 3500 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से ईरानी सरकारी मीडिया नूर न्यूज ने दी है। वहीं अमेरिका आधारित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में कुल 639 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से ईरान की सेना के शीर्ष अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल है। इस बीच इजरायल ने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल हमलों में अब तक उसमें 24 नागरिकों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में हॉट एयर बैलून दुर्घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सेंटा कैटरीना के गवर्नर जोर्गिनो मेलो ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि शनिवार सुबह को हुई दुर्घटना में हॉट एयर बैलून में 22 लोग सवार थे। मेलो ने कहा कि घटनास्थल पर राहत और बचाव की टीम पहुंच गई है और लापता लोगों की तलाश कर रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चितवन की राप्ती नगरपालिका के खहरे पुल स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में बस और माइक्रो बस के आपस में टकराने से 7 लोगों की हुई मौत। ईरान में रहे 16 नेपालियों का भारत सरकार के सहयोग में उद्धार किया जाएगा, परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर राणा ने दी जानकारी। और ईरान इसराइल युद्ध के 9 दिनों तक 400 से अधिक ईरानी नागरिकों की हो चुकी है मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।